सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा था मेरे ख्याल से, यदि आप लोगों को ध्यान में है। कौन से श्लोक तक पहुंचे थे हम? 17वें श्लोक तक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। भगवान सांख्य योग आत्मा का ज्ञान प्रारंभ किए और आत्मा के ज्ञान को भगवान प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने सर्वप्रथम भौतिक शरीर, ये जो नाशवान नश्वर भौतिक शरीर है, इसका वर्णन आत्मा के वर्णन के साथ साथ भगवान कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि ये जो श्रृंखला है श्लोकों की, जिसमें भगवान अर्जुन को ये प्रस्थापित करना चाहते हैं कि तुम जिसे नहीं मारना चाहते वो तो मरे हुए, और तुम जो सोच रहे हो कि जो मरेगा वो तो अमर है। समझ में आया? तो इतने सारे श्लोक अभी आज तो हम केवल 18वें श्लोक पर आए हैं, और कितने श्लोक आगे मेरे ख्याल से और 10-15 श्लोक हैं जिसमें भगवान इसी का वर्णन कर रहे हैं, इसी को प्रस्थापित कर रहे हैं। तो भगवान ने भगवद गीता की नींव इतनी पक्की डाली है कि कोई व्यक्ति इस भ्रम में रह ही नहीं सकता कि मुझे भगवद गीता का ज्ञान देहात्म बुद्धि में समझ में आ सकता है। जब तक वो देहात्म बुद्धि में है तब तक भगवद गीता का गुह्य ज्ञान वो पूर्ण रूपेण नहीं समझ में आएगा। जैसे एक शिष्य श्रील प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी, आपने वही बातें बार बार अपने तात्पर्यों में क्यों कही? वही बातें, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये भौतिक संसार दुखालय है, कितनी बार यही बातें हम आपकी पुस्तकों में तात्पर्यों में, पिछले तात्पर्य में भी लिखा, इस तात्पर्य में भी, और मुझे पता है अगले तात्पर्य में भी कुछ ऐसा ही होगा। वो पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी ने कहा, इतनी बार लिखने के बाद भी तुम्हें साक्षात्कार नहीं हुआ? तो प्रभुपाद ने कहा, तब तो मैंने कम लिखा। तो इसलिए ये जो शास्त्रों में बहुत बार आप पढ़ोगे कि एक ही सिद्धांत को अलग अलग तरीके से बताया जाता है या एक ही सिद्धांत को दोहराया जाता है, तो उसके पीछे उद्देश्य यह है कि हम कलयुग निवासी जो हैं उनको देखते हुए, हमारी दशा को देखते हुए भगवान और आचार्य जो हैं सिद्धांत को इस प्रकार से प्रस्थापित करते हैं। तो आज का जो श्लोक वो भी पिछले श्लोकों के ही तरह लगेगा आपको, जिसके अंदर फिर भगवान वही शरीर जो है वो अंतवान है और जो आत्मा है वो अविनाशी है, अनाशी है, अप्रमेय है, ये सारे शब्द इस्तेमाल किए गए। परंतु फिर भी हमारे आचार्य एक एक इन श्लोकों को भी लेके हमें ऐसा गुह्य ज्ञान दे रहे हैं कि हमें हर एक श्लोक में ऐसा साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है कि यदि वो एक श्लोक, उस एक श्लोक का एक वाक्य, एक शब्द, एक अक्षर भी हम उसे शुद्ध तरीके से, प्रामाणिकता से समझें तो भगवद गीता का जो गुह्य ज्ञान है वो हमारे सामने इतनी आसानी से प्रस्तुत हो पाएगा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अंतवंत इमे देहा, जो शरीर है वो अंत के लिए बनाया गया है, उसका अंत निश्चित है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, नित्य स्योक्ता शरीरिणः, इस शरीर के अंदर जो नित्य आत्मा है उसके तीन गुण बताए यहां पर, या तीन शब्दों से आत्मा की व्याख्या की भगवान ने, नित्य, अनाशी और अप्रमेय। तो भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि एक शरीर है और ये आत्मा के ऐसे गुण, शरीर का एक गुण बताएं अंत हो जाएगा, आत्मा के कितने गुण बताए, तीन गुण बताए। तो भगवान बस इतना सुनाने के बाद कह रहे हैं अर्जुन को, तस्मात् युद्धस्व भारत, बस अब खड़े हो चलो। तो हमें लग रहा है ये तो केवल अब 18 श्लोक हुआ दूसरे अध्याय का, तो कितने श्लोक बाकी हैं। और तो भगवान ये सोच रहे थे कि मैंने ये जो आत्मा का ज्ञान प्रारंभ किया है अर्जुन को समझाने के लिए, ये आत्मा का ज्ञान इसी में सब कुछ है, भगवान ये समझा रहे हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे कि भगवान अचानक अर्जुन को खड़े होकर युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ये सोच रहे थे कि बस हो गया, अब और क्या तुम्हें समझना बाकी है, और क्या मैं तुम्हें समझाऊं, और क्या तुम्हें समझना बाकी है, बस जो जड़ है तुम्हारी आसक्ति की वो है शरीर, और जो दिव्य ज्ञान इस आसक्ति को खत्म करेगा वो है आत्मा का ज्ञान, तो मैं तुम्हें सुना दिया हूं। परंतु नहीं, भगवान देखे कि अर्जुन फिर भी खड़े नहीं हुए, तो फिर आगे शुरू करेंगे और श्लोक। तो अब हम देखें कि आज का ये एक श्लोक जो कि पिछले कितने श्लोकों की समान ही दिखता है, परंतु कितने सारे मुद्दे हैं इसमें चर्चा करने के। शरीर की अनित्यता और इसके पश्चात भगवान इमे देहा इन शब्दों को कहे, उक्त्वा अर्थात कहे गए, कहे गए का अर्थ है पहले कहे गए भूतकाल में। जीवात्मा के लिए भगवान तीन शब्दों का प्रयोग कैसे किए, क्यों किए, काल की सीमा से परे श्री कृष्ण की दृष्टि, और अंततः भगवान कह रहे हैं हे भरतवंशी खड़े हो और युद्ध करो, गेट अप एंड फाइट। तो अब यदि हम देखें तो पिछला जो श्लोक था उसमें आत्मा की नित्यता बताई गई थी, और आज का जो श्लोक है उसमें शरीर की अनित्यता। याद है पिछला श्लोक, अविनाशी तु तद विद्धि, उसमें प्रधानता भगवान आत्मा को दे रहे थे, आत्मा की व्याख्या ज्यादा कर रहे थे। यहां पर भी आत्मा की व्याख्या की गई है, परंतु आत्मा से ज्यादा शरीर की व्याख्या आज के श्लोक में की गई है, जिसमें कि शरीर की अनित्यता। और ये इसलिए कि अर्जुन को ये न लगे और हमें ये न लगे कि आत्मा के साथ फिर शरीर भी तो रहेगा ना नित्य, दोनों विपरीत। देखिए दोनों विपरीत हैं, एक अनित्य और एक नित्य, और एक साथ जुड़े हुए। तो दो मान लीजिए कि जैसे चूहा और बिल्ली एक साथ रह रहे हो, क्या मेल है? दोनों एक दूसरे को मारने वाले हैं जी, एक दूसरे को नहीं, बिल्ली उसको मारती है, तो वो एक साथ रहना। उसी प्रकार से ये आत्मा जो कि नित्य अमर, ये इस नाशवान मरणीय शरीर के अंदर। तो यहां पर हमें हमारी चेतना से सर्वप्रथम समझना है। इसलिए भगवान ये जो दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिए हैं, ये धीरे धीरे अर्जुन की चेतना को परिवर्तित करने के लिए। जैसे कि हम नरसिंह चतुर्दशी में हिरण्यकश्यपु और प्रह्लाद, इनमें अंतर देख रहे थे। देखिए एक ही परिवार के पिता पुत्र, जैसे कि एक ही शरीर और आत्मा दोनों जो जुड़े हुए हैं, वैसे ही ये पिता है और ये पुत्र। तो हिरण्यकश्यपु नाम देखिए उसका, हिरण्य और कश्यपु में जिसको इतना आनंद मिलता अर्थात पदार्थ में, वन हु एंजॉयज द मैटर, दैट इज हिरण्यकश्यपु। और प्रह्लाद प्रकृष्ट रूपेण अल्लाद, जिसका आनंद केवल आत्मा में अर्थात भगवान में, वन हु ओनली एंजॉयज इन स्पिरिट और स्पिरिचुअल ब्लिस। तो यदि हम देखें हिरण्यकश्यपु, वो क्या देख रहा था? वो आत्मा भी यदि, कोई आध्यात्मिक वस्तु भी यदि उसके सामने आती तो उसे भौतिक मानता। जैसे स्वयं भगवान सामने आए तो भगवान को कोई ऐसा ही प्राणी मान रहा था, कोई अद्भुत प्राणी या विचित्र प्राणी आ गया है बस। सो हिरण्यकश्यपु's विजन वॉज टू सी मैटर इन स्पिरिट, और प्रह्लाद महाराज हिज विजन वॉज टू सी स्पिरिट इन मैटर, खंभे में भी भगवान को देखे। तो प्रह्लाद महाराज खंभे में भी भगवान को देखे और हिरण्यकश्यपु भगवान को खंभा मान रहा था कि कोई जस्ट डल मैटर, इसको तो मैं अभी खत्म कर दूं। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि हिरण्यकश्यपु वो आज का जो श्लोक है उसके विपरीत सिद्धांत का पालन कर रहा था। अंतवंत इमे देहा, ये शरीर जो कि अंतवान है, इस अंतवान शरीर को नित्य बनाना चाहता था। उसकी हम चर्चा कर रहे थे, डेमोनिक मेंटालिटी इज टू हैव एन एटर्नल लाइफ विद इन द मटीरियल बॉडी, एंड अ डिवोटी consciousness is to have an eternal life in a spiritual body. तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हिरण्यकश्यपु जो कि इतने देवताओं को उसने परेशान किया, ना अलग अलग प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान रोक दिए, गौओं की हत्या की, जो जो उसने पाप कार्य किए, तब जाकर वो राक्षस बना। वो राक्षसी प्रवृत्ति की नींव क्या थी? ये कॉन्शियसनेस। तो इस संसार में यदि किसी भी जीव की कॉन्शियसनेस ये है, ये चेतना है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो राक्षसी प्रवृत्ति अंततः है। इट्स अ डेमोनिक मेंटालिटी टू सी मैटर इन स्पिरिट। इसलिए हमें प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि हम सब प्रकृष्ट रूपेण अल्लाद ढूंढ रहे हैं। अल्लाद का अर्थ है आनंद, प्रकृष्ट रूपेण का अर्थ है सबसे विशेष आनंद। तो सबसे विशेष आनंद हम सब ढूंढ रहे हैं, और वो सबसे विशेष आनंद हमें तभी प्राप्त होगा जब हम प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए इस चेतना में रहेंगे, टू सी स्पिरिट इन मैटर। अब श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में शरीर की तुलना वृक्ष से की गई है, और हालांकि इस शरीर को आज भगवान ने कह दिया है कि ये अनित्य है, और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जब गर्भ स्तुति भगवान माता देवकी के गर्भ में, और सारे देवता देवताओं में से प्रमुख ब्रह्मा जी और शिव जी वो आते हैं कारागृह में, कंस के कारागृह में जहां देवकी और वसुदेव वो बाधित हैं, और वहां पर आकर वो गर्भ स्तुति करते हैं। तो गर्भ स्तुति में एक बहुत ही सुंदर श्लोक, इसमें अब देखिए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने, जन्माष्टमी अभी होने ही वाली है, परंतु उसमें ये श्लोक, इस श्लोक की व्याख्या हम करेंगे। इस श्लोक में केवल वो भौतिक शरीर के बारे में बता रहे हैं, और कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी, जिसने भौतिक शरीर बनाया सभी के, तो उनसे अच्छा अथॉरिटी कोई नहीं हो सकता ये भौतिक शरीर की व्याख्या करने के लिए। किनसे बड़ा अथॉरिटी? ब्रह्मा जी। तो वो कहते हैं, एकायनो सौ द्विफलस त्रिमूलस चतुरस पंच विदह षडात्मा सप्तत्वग अष्ट वितपो नवाक्षो दश छदि द्विखगो यादि वृक्ष। समझ गए? यहां पर जो वृक्ष है, एक वृक्ष को लेकर वृक्ष के दस पहलू बताए। थोड़ा ये फिलोसॉफिकल रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा अभी, कि एक वृक्ष है और वृक्ष में हम क्या क्या देखते हैं? वृक्ष के पत्ते, टहनियां, मूल और फल, वलकल। वलकल जानते हैं? बार्क। तो यहां पर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर तरीके से शरीर की तुलना ऐसे वृक्ष से कर रहे हैं, और वृक्ष के एक एक पहलू को लेकर शरीर में कैसे वो सब पहलू देखे जाते हैं वो बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम वृक्ष, तो इसमें नंबर्स ध्यान रखिएगा, इसलिए नंबर लिखे हुए हैं। वन ट्री हैविंग टू फ्रूट्स, थ्री रूट्स, फोर टेस्ट, फाइव एक्सपीरियंसेस। वो थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए इंग्लिश में लिख दिया मैंने, समझ लेना आप। तो वो नंबर ध्यान मेरा रखना है आपको, और उसके अनुसार हमारे शरीर में ये एक दो तीन चार पांच और आगे और भी पांच है, तो उनकी तुलना ब्रह्मा जी किससे कर रहे हैं? तो सर्वप्रथम वृक्ष की तुलना शरीर से। तो ये वृक्ष रूपी शरीर, या शरीर रूपी वृक्ष जो भी, ये एक शरीर या एक वृक्ष में दो फल, कौन से दो फल हो सकते हैं? कैसे लगे फल? ये जूस बनाना है इनका, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस शेक। ये दो फल हैं इस शरीर रूपी वृक्ष पर। फिर तीन प्रकार के जड़ हैं या मूल, वो है तीन गुण, थ्री मोड, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। चार प्रकार के अलग अलग रस हैं इस वृक्ष पर। तो ये चार प्रकार के जो रस हैं, जो ये शरीर आस्वादित करता रहता है, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पांच प्रकार के अनुभव ये वृक्ष लेता रहता है जैसे ये वृक्ष उगता है। तो पांच प्रकार के अनुभव कौन से हैं? पांच इंद्रियां। तो हम ये शरीर से अनुभव लेते हैं इस भौतिक संसार में इंद्रियों के द्वारा। पांच जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनके द्वारा हम अनुभव लेते हैं। इसके पश्चात फिर सिक्स सीजन्स, सेवन बार्क्स, एट ब्रांचेस, नाइन होल्स, टेन लीव्स। तो टेस्ट लिया जाएगा, ध्यान से आप पढ़िए। फिर छह जो सीजन्स हैं वो ये शरीर में क्या पाए जाते हैं? छह प्रकार की अवस्थाएं, जैसे वृक्ष छह प्रकार के ऋतुओं से गुजरता है, उसी प्रकार से ये शरीर ये छह अलग अलग जो स्थितियां हैं उससे हमारा शरीर गुजरता है। बर्थ, पैदा होते हैं, पैदा होते ही भूख लगती है, प्यास लगती है पहले, फिर भूख लगती है, फिर धीरे धीरे दुख ये शरीर अनुभव करता है, फिर भ्रम में जाता है और अंततः तो ब्रह्मा जी के अनुसार ये जो शरीर रूपी वृक्ष है इसके ये छह ऋतुएं हैं, द सिक्स सीजन्स ऑफ दिस बॉडी, द ट्री ऑफ द बॉडी। और सात जो लेयर्स हैं इस शरीर या इस वृक्ष के ऊपर, द सेवन बार्क्स, स्किन, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन, मैरो एंड सीमन। तो ये हमारा शरीर जो है इन अलग अलग प्रकार के सतह से बना हुआ है, लेयर्स, ये अलग अलग लेयर्स हैं हमारे शरीर के ऊपर। हमें लग रहा होगा कितना अच्छा सब कुछ, ब्रह्मा जी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं शरीर का, कि ये शरीर में कितने सारे गुण, देखो 10 10 गुण बताएं। एट ब्रांचेस कौन है? जो आठ तत्व, कौन से आठ तत्व कौन जानता है? हरे कृष्णा, जगे हुए हैं आप लोग। पंच महाभूत, कौन से पंच महाभूत? भूमिर, अपो, अनलो, वायु, खम, फिर मनो, बुद्धिर, अहंकार। सो फाइव ग्रोस एलिमेंट्स, थ्री सटल एलिमेंट्स। तो आठ जो टहनियां हैं उसकी तुलना इससे की गई है। नाइन गेट्स, नाइन होल्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे कर्मेंद्रियों से संबंधित अलग अलग जो नौ द्वार, नव द्वारे पूरे देही जो बताया गया है, वो हमारा शरीर इनसे बना हुआ है। और टेन लीव्स, दिस इज कंपेयर्ड टू द टेन लाइफ एयर्स, वो अलग अलग हैं, यान, उदान, प्राण, अपान, उदान, समान, इस प्रकार से 10 लाइफ एयर्स, ये 10 प्रकार के प्राण वायु हमारे अंदर है। तो ब्रह्मा जी ये सब बताने के पश्चात कह रहे हैं कि ये शरीर जो कि ये अलग अलग पहलुओं से बना हुआ है, ये शरीर इसको चला रहा है अंदर का आत्मा, ये आत्मा अंदर चला रहा है। जैसे कि एक बार श्रील प्रभुपाद को जदुरानी माता जी ने एक प्रश्न पूछा कि ये जो शरीर हमारा है, ये शरीर हालांकि हम आत्मा हैं, परंतु फिर भी हम इस भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार के सुख और दुख क्यों भोगते हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि जब हम भक्ति में आ जाते हैं उसके पश्चात भी क्यों हमें सुख दुख अनुभव होता है इस भौतिक शरीर का। श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जैसे कि एक समुद्र में जहाज है या नौका है और आप उस नौका में हो, तो जो लहरें हैं समुद्र की वो उस नौका को हिला रही हैं, वो लहरें, और आप क्योंकि नौका में बैठे हो तो आप भी तो हिलोगे। परंतु जब तक आप नौका से कूद के समुद्र में नहीं जाते तब तक वो समुद्र का पानी आपको गीला नहीं कर सकता, आपको हिला सकता है परंतु आपके शरीर को गीला नहीं कर सकता। तो वैसे ही जो बद्ध जीव हैं वो तो समुद्र में नौका में है ही नहीं, तो वो तो गीले भी हो रहे हैं और यहां वहां फेंके भी जा रहे हैं। परंतु जब कोई आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है या कृष्ण भावनामृत में आता है तो वो नौका में स्थित है, नौका में स्थित है परंतु फिर भी वो नौका समुद्र में, जब तक कि वो आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं होता तब तक उसे उस नौका के साथ उस समुद्र में ही रहना होता। तो प्रभुपाद ने कहा बिकॉज दैट बोट इज विद इन द मटीरियल ओशन एंड द मटीरियल ओशन हैज टर्बुलेंट वेव्स एंड बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस ऑफ द ओशन द बोट इज रॉकिंग एंड द पैसेंजर इन द बोट इज ऑल्सो रॉकिंग but he should know that he is not affected by the water. तो हमारी भक्ति में हाँ ये जो लहरें हैं भवसागर की वो हमें हिलाएंगी, थोड़ा हम हिलेंगे यहां, कभी कभी थोड़ा ज्यादा हिल जाते हैं, थोड़ी कोई तूफानी लहर आती है तो ज्यादा हमको हिला देते, तो लेकिन बोट छोड़ना नहीं। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये शरीर लोगों को इतना महत्वपूर्ण क्यों लगता है, क्योंकि इतना बड़ा दिखता है। ये जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया गया ना, ब्रह्मा जी ने दिया कि दो ये तीन वो चार ये पांच ये छह ये दस ये, इतना सारा सब विवरण दिया है शरीर का, और आत्मा 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर बताया। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि ये इतना सा केशाग्र षट भागस्य, इतना सा चितगण, ये आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाता है, परंतु उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति दिव्य है। ये भौतिक शरीर दिखने में बड़ा होगा परंतु इसके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्योंकि ये भौतिक है। जैसे आप देखिए, प्रभुपाद ने यह उदाहरण दिया कि एक पोटेशियम साइनाइड का एक बूंद, प्रभुपाद कहते हैं इफ पोटेशियम साइनाइड, वन ड्रॉप ऑफ पोटेशियम साइनाइड कैन किल दिस ह्यूज बॉडी, देन व्हाई नॉट द स्पिरिट सोल कैन एक्टिवेट दिस ह्यूज बॉडी। इसलिए हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए कि साइज क्या है किसका, साइज से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये भगवान यहां पे बता रहे हैं। जैसे वो कई बार वो फेरी वाला लेके घूमता है ना, वो बुड्ढी के बाल, बहुत बड़ा साइज दिखता है उसका, इतना बड़ा, लेकिन उसको खाने जाओ फुसका कुछ नहीं अंदर उसके, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां गया, कहां से आया कहां गया। तो दिखने में वो बहुत बड़ा बड़ा दिखता होगा लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं, वही बोलते हैं बुड्ढी का बाल। तो ब्रह्मा जी देखिए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय क्या याद कर, क्योंकि अभी अभी सृष्टि करके आए तो उनके मन में ये सब इतने सारे शरीर उत्पादित किए हैं, तो उसमें वो महत्व दे रहे हैं। इतना सब कुछ शरीर को सुनाने के पश्चात शरीर को महत्व नहीं दिया जा रहा है कि इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए जब तक आत्मा वो प्रवेश नहीं करता तब तक ये शरीर जिसके अंदर इतने सारे अलग अलग पहलू हैं वो किसी काम का नहीं। और फिर वो कहते हैं कि वो आत्मा जब तक हे भगवान आप जो परमात्मा हो आपके द्वारा संचालित नहीं होता तो वो आत्मा भी किसी काम का नहीं। तो इंपॉर्टेंस किसे दिया जा रहा है, इसको समझाकर आत्मा को, आत्मा को समझा के परमात्मा को और भगवान जो कि उनके भी स्रोत हैं परमात्मा के। इसलिए इन सिद्धांतों से हम ये समझ रहे हैं कि भगवान शरीर का विवरण क्यों दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने दिया शरीर का विवरण देने के पश्चात बता रहे हैं कि ये शरीर जो कि मरा हुआ इसे चला रहा है, सब जो तुम रो रहे हो, ये लोग सब जो खड़े हैं, हे अर्जुन ये अंदर का जो आत्मा है जो कोई यहां पर पहचान नहीं पा रहा मेरे अलावा वो सब कुछ करा रहा है। अब इमे देहा भगवान बहुवचन कहें और आत्मा एक वचन, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ये समझा रहे हैं कि जो आत्मा है वो अलग अलग शरीर का धारण करता है, तो अर्जुन को ये न लगे कि अभी जो मैं जिस शरीर को मार डालूंगा वो शरीर पुनः नहीं मिलेगा इन्हें, या इन्हें पहले नहीं मिला था। तो यहां भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन ये शरीर कितने सारे शरीर तुमने भी लिए, जैसे हमने पिछला श्लोक जो 12वां श्लोक लिया था नत्वेवाहम जातु नासम, भगवान के कितने ऐसे जन्म हो चुके हैं अर्थात कितने ऐसे शरीर अर्जुन हम सब ने ले लिए हैं, भगवान तो नहीं बाकी, और कितने ऐसे शरीर और लोगे, परंतु ये जान लो कि ये जो तुम्हारा आत्मा है और इन सब का आत्मा है वो एक वचन है, और ये शरीर बहुवचन, ये शरीर बदलते रहते हैं, कितने सारे 84 लाख अलग अलग प्रकार के ऐसे शरीर हैं। और प्रभुपाद ने तो जैसे अक्सर हम इसकी चर्चा किए, प्रभुपाद ने कहा कि कर्मों के अनुसार जब हम किसी एक शरीर में प्रवेश करते हैं, कोई यदि मनुष्य शरीर को छोड़कर किसी प्राणी के शरीर में जाता है या किसी वृक्ष के शरीर में या किसी और जलचर के शरीर में, तो उसे वो जो योनि है उसके जितने शरीर हैं सब शरीरों से गुजरना पड़ता है उस आत्मा को। That soul has to pass through all the different bodies of that one species. कुत्ता है तो हर प्रकार का कुत्ता पहले बनेगा वो, फिर अगली योनि में आएगा, फिर अगर अगली योनि में पक्षी बन गया तो हर प्रकार का पक्षी बनेगा वो, और फिर उसके ऊंची वाली योनि में। तो सोचिए कितना भयावह है ये मनुष्य शरीर खो देना, इट्स द ग्रेटेस्ट लॉस, महतो भयात, सबसे बड़ा लॉस इसे खो देना। फिर ये नहीं कि हम फिर 4 लाख मनुष्य भी बनेंगे, नहीं, वो बाकी 80 लाख में से जितने सारे, वो तो खाली कैटेगरीज अलग अलग हैं, उसके अंदर कितने अलग अलग शरीर में से गुजरना पड़ेगा। सोचिए कीड़े जो आए आज, हम कभी थे ऐसे ही घूम रहे थे, आज तो इनका सौभाग्य कि भगवान के कीर्तन में बहुत से शहीद हो गए। तो ऐसी सुकृति जिनको मिल जाती है तो हो सकता है कि वो तुरंत मनुष्य देह मिल जाए उन्हें, या कोई आध्यात्मिक पथ में लग जाए। परंतु कर्म के नियम के अनुसार देखिए भगवान कह रहे हैं इमे देहा। हालांकि दो ही शब्द हैं परंतु उनकी व्याख्या क्या है, इतने सारे शरीरों, ये तो इस स्लाइड में फिट नहीं हो सके पूरे 84 लाख, तो जितने फिट हो सके वही फिट किए। तो हाँ ये हम लोग देखते होंगे डिस्कवरी चैनल पे कितना सुंदर दिखते हैं, देखो चीता और ये बिल्ली देखो कितने पालते भी हैं लोग उसको, परंतु जब उसके अंदर रहना पड़ता है आत्मा को तब सोचिए जो कीड़े, ऐसा जीवन। मैं देख रहा था आज मेरे कमरे में एक छिपकली को देख रहा था, क्या जीवन है इसका, बस सुबह से लेके रात तक बस कीड़ों को ढूंढते रहो और चिपके रहो दीवार पे। मैं सोच रहा था एक जमाने में एक पता नहीं दिन मैं भी ऐसा ही छिपकली था, कहीं चिपका हुआ था। तो सोचिए कि यदि भगवान की भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो एक छिपकली बन सकते किसी दीवार पे चिपके हुए बस, और कोई उनके फोटो नहीं खींचता, कोई गुणगान नहीं करता छिपकली का। तो ये भगवान यहां पर बता रहे हैं कि अर्जुन क्यों तुम और देह लेना चाहते हो, यहां पर मैं तुम्हारे सामने स्थित हूं धर्म की स्थापना कराने के लिए, तुम धर्म का पालन करो, धर्म की स्थापना करो, छुट्टी इस सारे जो देह तुमने इतने लिए और आगे भी यदि लोगे उन सब से छुट्टी यदि तुम आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे। इसलिए भगवान एक वचन और बहुवचन में, आत्मा को एक वचन में और शरीर को बहुवचन में बता रहे हैं। अब उक्त्वा अर्थात कहे गए, तो भगवान सोच रहे थे कि मैं बोल रहा हूं अर्जुन को तो अर्जुन को शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो भगवान कहते हैं उक्त्वा अर्थात अर्जुन ये केवल मेरी वाणी नहीं है, ये शास्त्रों की वाणी है, ये बड़े बड़े जो पूर्वज आचार्य हुए हैं साधु हुए हैं उन पर आधारित मैं बोल रहा हूं। देखिए भगवान की व्यवस्था देखिए दूसरे अध्याय में कि उनके आधार पर मैं बता रहा हूं कि कम से कम उन पर विश्वास करो अर्जुन। क्या विश्वास करो, कि ये शरीर अंतवान है नाशवान है और आत्मा जो है वो अमर है वो नित्य है। इसलिए भगवान उक्त्वा इस शब्द का प्रयोजन कर रहे हैं। अब जीवात्मा के लिए ये तीन शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए, नित्य अनाशी अप्रमेय। हालांकि एक वचन में कहा आत्मा को, परंतु आत्मा का गुणगान करने के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए कि नित्य का अर्थ है एवर एग्जिस्टिंग, अनाशी जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, और अप्रमेय जिसे कोई माप नहीं सकता। अब ये जो माप दिया गया है उपनिषदों में जैसे केशाग्र शटभागस्य शटदा कल्पितस्य च, कि यदि आप केश के अग्र भाग को लेकर उसके 100 भाग करोगे और उसमें से हर एक भाग को और 100 भाग करोगे तो उसका माप दिया गया है ना अभी, परंतु वो माप माप नहीं है वास्तविक रूप में, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अप्रमेय है बिना माप के। वो इसलिए क्योंकि भगवान आगे इसी अध्याय में कहेंगे कि आत्मा सर्वगत है। आत्मा सर्वगत का अर्थ है कि इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक संसार में सब जगह पर आत्मा व्याप्त है, अर्थात जो आत्मा के गुण हैं वो व्याप्त। इसलिए एक शरीर के अंदर एक आत्मा के बारे में कहा गया है कि वो इतना सा कण है, परंतु वो सुप्त अवस्था में है, इट्स इन अ डोरमेंट स्टेज। और जब उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, सो ही अचीव्स अ स्पिरिचुअल फॉर्म विच इज इमेजरेबल। जैसे कई बार आप कई ऐसे ये फिक्शन नॉवेल्स होते हैं जिसमें ना एक टर्म यूज करते हैं, शेप शिफ्टर्स। कई लोग हॉलीवुड मूवीज भी ऐसे बनाते हैं जिसके अंदर वो लोग अलग अलग रूप ले सकते हैं। जैसे राक्षसी लोग भी, पूतना अलग अलग रूप ले सकती थी, अघासुर ये सारे। तो इनके अंदर यदि भौतिक रूप से ऐसी शक्ति आ सकती है कि ये अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, ये केवल योग सिद्धियां हैं। तो सोचिए कि जो आत्मा में स्थित हो, आत्मा के अंदर कितनी शक्तियां होंगी ये जो शेप शिफ्टिंग की शक्तियां, कितनी इसमें ऐसी शक्तियां होंगी। और इसलिए भगवान जब अपने पार्षदों को आध्यात्मिक संसार से लाते हैं, जैसे कि रामचंद्र जी ने वानर सेना को इस्तेमाल किया। वो वानर सेना थी कौन? सारे देवता थे वो। अब हम भी बोल सकते हैं कि हम भी तो वानर थे एक दिन, डार्विन बोलता है जो। लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। इसमें आत्मा के गुण को लेते हुए उनको अलग अलग रूप दिए गए, तो इसे कोई नाप नहीं सकता आध्यात्मिक संसार में। और वो जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान जो कि पूर्ण आध्यात्मिक हैं, भगवान जो कि अप्रमेय हैं, भगवान जो कि अनाशी हैं, भगवान जो कि नित्य हैं, उनके निर्देशन में उनके आत्मा उनकी लीला को, उनके जो उनका जो मिशन है उसको सिद्ध करने के लिए वो अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान ये तीन शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन को ये समझाने के लिए कि अर्जुन तुम ये मत मानो कि ये जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जिनके प्रति तुम्हारी इतनी सहानुभूति तुम प्रकट कर रहे हो कि ये इसी रूप में तुमसे हर बार मिल पाएंगे। तुम यदि आत्मा को जानोगे तो ये किसी भी रूप में तुम्हें मिल पाएंगे। इसलिए तुम अपना संबंध उनके नाशवान शरीर से मत करो। तुम नाशवान शरीर से करोगे तो हर समय दुख में रहोगे, क्योंकि वो तो जाना ही है एक दिन, क्योंकि वो अनाशी नहीं है और नित्य नहीं है और अप्रमेय नहीं। इसलिए बार बार भगवान उसी सिद्धांत को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम इनके आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करो। और फिर भगवान यहां पर जब इमे देहा कहते हैं, बहुवचन को इस्तेमाल करते हुए कि इतने सारे शरीर इन्होंने लिए, तुमने लिए, और आगे भी कितने सारे शरीर ये भी लेंगे और तुम भी लोगे, तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन मैं ये सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि काल के परे है, काल की जो सीमा है उसके परे है। तो अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ आश्चर्यचकित नजरों से देख रहे थे कि आप ये क्या बोल रहे हो कि आप ये सारे देहों को जाने थे पहले और आगे भी आप जानोगे कि कौन से देह लेने वाले हैं। हाउ कैन यू से, क्योंकि भगवान काल की सीमा के परे हैं। अब देखिए, जब भगवद गीता में भगवान अपनी व्याख्या करते हुए कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भूतानि च भविष्यानि। भगवान कहते हैं कि वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्यकाल में जो कुछ, मैं सबको जानता हूं। तो मान लीजिए कि हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले, भगवान छोड़ दीजिए, कोई हम ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, तो कैसा लगेगा? हमारे हमारी इच्छाओं को जानता है वो, या छोड़ दी इच्छा नहीं, हमने जो जो करतूते किए हैं उनको जानता है वो। जैसे कई बार जब भक्ति में कोई आ जाता है तो उनके माता पिता, अच्छा अभी ये माला हाथ में, पिछले हफ्ते क्या थे हाथ में, मैं सब जानता हूं बचपन से तुम क्या क्या किए हो, और अब अचानक साधु बन गए, तुम्हारा सारा चिट्टा जानता हूं मैं पीछे से। तो ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां पर अब जब भगवान का ये गुण हम देखें, तो एक है अभक्त और एक है भक्त। अंतर्यामी जो गुण है भगवान का, अंतर्यामी होने का अर्थ क्या है, सब कुछ जो जानते हैं। तो जो अभक्त हैं वो जब भगवान का ये गुण सुनते हैं जानते हैं तो उनके अंदर भय उत्पन्न होता है, परंतु जो भक्त वो भगवान का ये गुण सुनने के पश्चात उनके अंदर कॉन्फिडेंस, भगवान के अंदर विश्वास जागृत होता है। क्यों, क्या कारण है इसका? वही भगवान अंतर्यामी जो कि काल की सीमा के परे हैं और उनकी दृष्टि काल की सीमा के परे है। एक अभक्त जब ऐसे भगवान के संपर्क में आता है तो वो डरता है, भयभीत रहता है। आप देखो कई बार लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर में कुछ गलत काम नहीं करना चाहते, है ना? तो यदि किसी को कुछ झूठ वूट भी बोलना है तो चलो मंदिर के बाहर चलो। क्यों? भगवान देख रहे हैं, जैसे मंदिर के बाहर नहीं देखेंगे। तो ये क्या है साइकोलॉजी, ये है कि उसके मन में खोट है। वही बात कि चोर जब पुलिस को देखता है तो भयभीत होता है, और एक नागरिक जो सब कानून का पालन कर रहा है वो जब पुलिस को देखता है तो उसके अंदर ही गेट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो वैसे ही जब तक भक्ति में हमारे अंदर भय बना रहेगा तो मान लेना चाहिए कि हम अब तक हमारे भूत या जो भी हमने पाप किए हो, जो भी उससे संबंधित वो अब तक चिपका हुआ है, वो आसक्ति चिपकी हुई है जिसके वजह से ये भय उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पर भगवान जब अर्जुन को इमे देहा कह रहे हैं कि मैं इन सब शरीरों को जानता हूं, तो अर्जुन के अंदर, क्योंकि अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद शुद्ध भक्त हैं, तो अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति विश्वास और गहरा होता जा रहा है। और ये भगवान इसलिए सुनाए ताकि अर्जुन भगवान पर विश्वास गहरा कर भगवद गीता को सही चेतना में सुने, और हमें यदि अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवद गीता को सही चेतना में सुनना है तो ये जानना चाहिए कि भगवान अंतर्यामी है, भगवान हमारे वर्तमान, हमारे भूत और हमारे भविष्य को जानते हुए हमारे वो मालिक हैं। तो ऐसे भगवान की जो वाणी है, उनके जो वचन हैं, वो मैं सुन रहा हूं तो मेरे अंदर उनके प्रति दृढ़ विश्वास जागृत होना चाहिए, भय नहीं। इसलिए हम उस स्थिति से उभरे भगवान के इस गुण को जानते हुए, और फिर अंततः भगवान कह रहे हैं इसलिए हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। भगवान कहते हैं तस्मात् युद्धस्व भारत। वो इसलिए बोल रहे हैं भगवान क्योंकि अर्जुन को कह रहे हैं भरतवंशी, तुम इस वंश में पैदा हुए हो। महाराज भरत के वंश में तुम पैदा हुए, भरत वंशी तुम हो। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे मरने के पश्चात या इन सब के मरने के पश्चात ये वंश परंपरा खत्म हो जाने वाली है। फिर इमे देहा, कि तुमसे पहले कितने सारे शरीर पैदा हुए इस भरत वंश में और तुम्हारे बाद भी बहुत से शरीर पैदा होंगे इस भरत वंश में। इसलिए तुम इस चिंता में मत रहो कि ये वंश खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि वंश ये शरीरों का बना है, भौतिक शरीरों का बना है। और जब तक इस भौतिक संसार में कुकर्म चलता रहेगा, कर्म जो भी पुण्य या पाप जो भी चलता रहेगा, तब तक ये मनुष्यों की वंश परंपरा चलती रहेगी। इसलिए वो भरतवंशी कहने के दो कारण हैं। एक ये कारण है कि ये वंश परंपरा खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक जीव पुण्य और पाप में लगा हुआ है तब तक शरीर मिलता रहेगा उसे। और हां, यदि तुम धर्म की स्थापना करोगे और तुम्हारे वजह से जितने सभी ये भरतवंशी एकत्रित हुए हैं उनका उद्धार यदि हो जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे, तो भरत वंश तब खत्म होगा। कब खत्म होगा? युद्ध करने से। और सही मायने में खत्म होगा, क्योंकि फिर ये सारा तुम्हारा भरत वंश भगवत धाम जाएगा, नहीं तो ये भरत वंश यहीं पर सड़ता रहेगा जब तक कि तुम धर्म की स्थापना नहीं करोगे। इसलिए यहां पर इन दो कारणों की वजह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे भरतवंशी, अपने वंश का ध्यान करते हुए, अपने वंश की सदगति का ध्यान करते हुए तुम खड़े हो और युद्ध करो। परंतु फिर भी अर्जुन तैयार नहीं। तो अब आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, यएनम वेत्ति हंतारम, कि ये आत्मा वो है, न तो कोई इसे मार सकता है न ये आत्मा किसी को मारता है। अब आपको लग रहा होगा वही तो चीज है बार बार बोल रहे हैं, नहीं, ये दूसरा सिद्धांत भगवान प्रस्थापित कर रहे हैं अगले श्लोक के द्वारा, कि अर्जुन तुम यदि मारोगे भी तो तुम नहीं मारे हैं, तुम्हारा शरीर मार रहा है। और तुम जिसको मारोगे वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा है, तुम तो शरीर को मारने वाले। तो इसलिए न तो तुम्हें कोई पाप लगने वाला है न वो मरने वाले। तो भगवान बहुत ही गहरा लॉजिक यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमारे मस्तिष्क की एक्सरसाइज भगवान दे रहे हैं दूसरे अध्याय में। सांख्य योग का जो सिद्धांत है, इट्स एन एक्सरसाइज फॉर द इंटेलिजेंस। तो आज के श्लोक से भगवान ने यह प्रस्थापित किया कि अर्जुन, जो मैंने नित्य आत्मा का विवरण दिया था उसके विरुद्ध ये समझ लो कि ये जो शरीर है वो अनित्य, हालांकि बहुत से शरीर या आत्मा लिए है, परंतु ये आत्मा नित्य है, अनाशी है और अप्रमेय है। और इसके पूरा विपरीत है ये शरीर, जो कि अनित्य है, जो कि विनाशशील है और जो कि प्रमेय है, अप्रमेय नहीं है। इसलिए अर्जुन खड़े हो, मेरी बात मानो, खड़े हो जाओ, गांडीव लो और युद्ध करो। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? इमेजरेबल। देखिए, उसको कोई माप नहीं सकता, इसका अर्थ यह है कि वो किसी भौतिक वस्तु या विशेष, भौतिक वस्तु विशेष के अधीन आत्मा नहीं आ सकता. जस्ट लाइक एनीथिंग मटीरियल कैन बी मेजर्ड यूजिंग मटीरियल टूल्स, सो यू कैन नॉट हैव अ मटीरियल टूल टू मेजर स्पिरिट, देयरफॉर इट इज इमेजरेबल. आप कोई स्केल लेके, वर्नियर कैलिपर लेके माप नहीं सकते ये आत्मा इतना बड़ा है. इस शरीर का हाइट वाइट बताया जाता है, परंतु और हां, आत्मा को एक दृष्टिकोण से मापा जा सकता है, दिव्य. व्हेन यू हैव स्पिरिचुअल टूल्स एंड दैट स्पिरिचुअल टूल इज ओनली विद कृष्णा, सो ही कैन मेजर द सोल एंड ही कैन मेजर एनीथिंग, बट फॉर us, that spirit is immeasurable. Basically, it's a principle. Don't go into the literal meaning. The principle is that spirit is something which is in connection with Krishna, who is unlimited, who is beyond the material measuring and all that stuff. So therefore, we also have the same quality. शिल प्रभुपाद की जय. ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. कुछ सूचना है. सबसे पहले तो जो भक्त भक्ति शास्त्री एग्जाम देने वाले हैं या उसके लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सूचना कि कीर्तन के तुरंत बाद यही टेंपल हॉल में उनके लिए एक मीटिंग होगी जो श्रीमान गोविंद आनंद प्रभु द्वारा ली जाएगी. तो कृपया करके सभी भक्ति शास्त्री कैंडिडेट्स यहाँ पे ही रुके, और जो भक्त आज के बुधवार के गीतामृत कार्यक्रम के लिए पहली बार उपस्थित हुए हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ, कृपया करके 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे पधारे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. आपके ये भक्तिमय जीवन की जो शुरुआत है, इसके लिए हम सभी भक्त शिष्य गौर निताय और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. बहुत बहुत धन्यवाद. आप बैठ सकते हैं. जो भक्त पहली बार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके कीर्तन के बाद यहाँ पे नरसिंह कृपा प्रभु होंगे, तो कृपया करके आप उन्हें आके मिलिए, ताकि यहाँ पे मंदिर में जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में वो आपको ज्यादातर जानकारी दे सके. और एक विशेष सूचना है बाल गोपाल संडे स्कूल की तरफ से. आने वाले 20 जून से संडे स्कूल शुरू हो रहा है, तो उसके जो एडमिशन्स है वो 6 जून और 13 जून को 10 सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटे के लिए मंदिर में यहाँ पे उन्हें एडमिशन फॉर्म्स उपलब्ध होंगे. तो जिन किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों को संडे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो कृपया करके इन 2 दिन आके फॉर्म कलेक्ट करें, और आप उसके साथ साथ अगर उन पेरेंट्स के और कोई दूसरे कोई भक्त पहचान के हैं तो कृपया करके उनको भी आप इन्फॉर्म कीजिएगा. हरे कृष्ण.
जय शिशि निताय गौर चंद्र की. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम.